उसने चादर को और कसकर अपने चारों तरफ लपेट लिया। हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। दोनों बाप बेटी टैक्सी में बैठ गए और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही टैक्सी गली से बाहर निकली, दूर खड़ा खलील सब देख रहा था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनके पीछे निकल पड़ा। वो खलील था, वो भी पीछे ही जा रहा था, मगर इकबाल को इस बात की खबर नहीं थी। सुल्ताना बेगम की नज़र खलील पर पड़ गई थी कि वो इकबाल के पीछे जा रहा था। उसे घबराहट हुई। इकबाल ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। वो इस बात से अनजान था कि खलील गाड़ी से उसके पीछे आ गया है। मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, एक नई मुसीबत और आ गई। झटका, टैक्सी जोर से हिली और कुछ ही सेकंड में रुक गई। क्या हुआ? इकबाल ने तेजी से पूछा। ड्राइवर ने बाहर झांकते हुए कहा, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। आगे थोड़ी दूर वर्कशॉप है, वहीं तक धकेल लेते हैं। सड़क सुनसान थी और समय तेजी से निकल रहा था। तीनों मजबूरी में टैक्सी से उतर गए। उसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहां साकेत अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवा रहा था। उसने यूं ही नज़र उठाई और उसकी नज़र सीधे नूर पर जाकर ठहर गई, जो चादर में खुद को छुपाए टैक्सी में वापस बैठ रही थी। कुछ तो अजीब था। उसने हल्का सा सिर तिरछा किया, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और दूसरी तरफ खलील की गाड़ी धीरे धीरे पास आ रही थी। गाड़ी जैसे ही मैकेनिक के पास आकर रुकी, साकेत की नज़रें अनजाने में बार बार नूर की तरफ उठ रही थी। नूर चुप थी, मगर उसकी खामोशी में भी एक बेचैनी साफ झलक रही थी। मैकेनिक गाड़ी देखने लगा था, जबकि इकबाल और नूर वापस गाड़ी में बैठ गए थे। इकबाल आगे बैठा था और नूर पीछे। तभी अचानक खिड़की पर कक-टक की आवाज़ हुई। उसने धीरे से साइड का शीशा नीचे किया। सामने खलील खड़ा था, होठों पर हल्की मुस्कान। इकबाल के चेहरे का रंग उड़ गया। नूर ने झट से अपना चेहरा चादर में छुपा लिया, जैसे किसी की नज़र से खुद को बचा लेना चाहती हो। खलील थोड़ा झुककर अंदर झांकते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? खैर तो है? इकबाल ने खुद को संभालते हुए कहा, वो बस ऐसे ही अस्पताल जा रहे हैं। उसकी आवाज़ में हल्की कंपकंपी थी, जो छुपाई नहीं छुप रही थी। वो जल्दी से शीशा ऊपर करने लगा, मगर खलील इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वो थोड़ा और करीब आ गया, आवाज़ में बनावटी अपनापन लाते हुए बोला, चाचा आखिर कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। उसका लहजा अब सवाल से ज्यादा शक में बदल चुका था। उधर साकेत भी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर खड़ा हो गया था। उसकी नज़रें गाड़ी पर टिक गई थीं। शीशे के उस पार से उसे साफ दिख रहा था। नूर ने चादर में खुद को पूरी तरह छुपा लिया था, जैसे वो सिर्फ चेहरा नहीं अपनी पहचान छुपा रही हो। खलील गाड़ी से हटकर अपनी तरफ लौटने लगा था, मगर साकेत वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ शक था और गुस्सा भी। अचानक उसने आवाज़ दी, शहर से हो? खलील ठिठक गया, धीरे से पलटा और साकेत को घूरते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? साकेत हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में तंज था। तुम्हारी बेचैनी बता रही है। खलील की आंखें सिकुड़ गईं, अब बात उसे चुभने लगी थी। क्या कहना चाहते हो? उसने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। साकेत एक कदम आगे बढ़ा, यही कि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। हवा जैसे एक पल को रुक गई। खलील का चेहरा तमतमा गया। मतलब? साकेत ने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की और एक तस्वीर उसके सामने कर दी। पहले भी बहुत आए हैं उसके पीछे। तस्वीर में रेहान था, फिर उसने दूसरी फोटो दिखाई और ये फैजान। खलील अब ध्यान से स्क्रीन देख रहा था। उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी थीं। साकेत की आवाज़ अब और कड़वी हो गई थी। समझे, इसका बहुतों से चक्कर है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर चोट खाए इंसान की कड़वाहट साफ झलक रही थी। वो सच नहीं जानता था, मगर जो उसने देखा वही उसे सच लग रहा था। जैसे ही खलील साकेत के साथ बातों में उलझा, इकबाल ने जल्दी से फ़ोन निकाला और सुल्ताना बेगम का नंबर मिला दिया। फ़ोन उठते ही उसने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, ध्यान से सुनो, अगर खलील या साकेत घर आएँ और हमारे बारे में पूछें तो बस इतना कहना कि हम अस्पताल गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। उधर से सुल्ताना बेगम की घबराई हुई आवाज़ आई, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं और ये साकेत बीच में कहाँ से आ गया? इकबाल ने आँखें बंद करके गहरी सांस ली, मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस मेरी बात याद रखना, किसी को कुछ नहीं बताना और किसी से बात करने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? कुछ पल की खामोशी के बाद, ठीक है, सुल्ताना बेगम ने धीरे से कहा और फ़ोन कट गया। फ़ोन कटते ही उनके दिल में अजीब सी घबराहट भर गई, जैसे कोई अनहोनी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उधर गाड़ी में इकबाल ने नूर की तरफ देखा, बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। नूर ने हल्का सा सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। इकबाल खुद भी अंदर से कांप रहा था, मगर बेटी के सामने खुद को मजबूत दिखाना जरूरी था। उधर बाहर खलील और साकेत अब भी बातों में उलझे हुए थे। साकेत मोबाइल में तस्वीरें दिखाते हुए कह रहा था, देख इसे तो खाना भी खिलाया जाता है, साथ में पैक करके भी दिया जाता है। उसकी आवाज़ में जलन और गलतफहमी साफ झलक रही थी। खलील ध्यान से सब सुन रहा था। उसके दिमाग में शक की गांठ और मजबूत होती जा रही थी। इसी बीच इकबाल की टैक्सी धीरे धीरे वहां से निकल गई। कुछ सेकंड बाद खलील की नजर उस पर पड़ी। रुको, उसने खुद से कहा। उसकी आंखें फैल गईं। ये लोग निकल गए। वो भागता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ गया, जल्दी से दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी, सीधे उस टैक्सी के पीछे। साकेत वहीं खड़ा रह गया था। उसकी नजरें उस रास्ते पर टिकी थी जहां से अभी अभी टैक्सी गई थी। दिल में अजीब सी कसक उठ रही थी। अगर वो सच में, वो सोचकर ही रुक गया। सिर झटक कर उसने खुद को संभाला और वापस मोटरसाइकिल ठीक करवाने लगा, मगर उसका ध्यान अब काम में नहीं था। उधर सड़क पर खलील अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। वो थोड़ा पीछे जरूर रह गया था। साकेत से हुई दो चार मिनट की बातचीत अब भारी पड़ रही थी। बीच में ट्रैफिक आ गया था, हॉर्न, भीड़, रुकती चलती गाड़ियां। वो चाहकर भी टैक्सी के बराबर नहीं पहुंच पा रहा था। चाहे कुछ भी हो, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। टैक्सी के अंदर नूर ने पीछे मुड़कर देखा, दिल जोर से धड़क उठा। अब्बू, वो हमारे पीछे आ रहा है। इकबाल ने भी शीशे में देखा, चेहरे पर चिंता साफ उतर आई। डरना मत, बस कुछ देर और, उसने खुद को भी समझाया और नूर को भी। कुछ देर बाद टैक्सी यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर रुकी। आज नूर का एग्जाम था, इसी वजह से वो सुबह इतनी जल्दी निकले थे। इकबाल ने जल्दी से इधर उधर देखा, जल्दी अंदर जाओ और सीधा एग्जाम हॉल में जाना। उधर एक फरीद खान के घर में और ही साजिश चल रही थी। लॉन में ड्राइवर खड़ा था, हाथ में कुछ जरूरी पेपर्स लिए। ये पेपर्स बड़े साहब को देने हैं, उसने कहा। सकीना ने सिर हिलाया। अभी नहीं, वो स्टडी में है, इस वक्त किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि फरीद खान जब काम करता था वहां किसी का भी आना मना था। लेकिन ये जरूरी है, मुझे ये देकर वापस भी जाना है, ऑफिस बंद हो जाएगा, ड्राइवर परेशान हो उठा। तभी पीछे से जुबेदा बेगम की आवाज आई। क्या हुआ, करीम ने पलट कर कहा। कुछ नहीं, दस ये पेपर्स अंदर देने हैं। मगर जुबेदा ने बिना ज्यादा सोचे पेपर्स उसके हाथ से ले लिए। दो, मैं दे देती हूँ, मैं अंदर ही जा रही हूँ, फिर सकीना की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ मेरे लिए चाय बना लो। और वो पेपर्स लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मगर साथ ही जुबेदा बेगम की बात ने उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी जगा दी। वो सोचने लगी, आखिर वकील ने ये कागजात क्यों भिजवाए थे, कहीं कोई नई परेशानी तो खड़ी नहीं हो गई। अगर चाहो तो मैं इसे थोड़ा और सस्पेंसफुल या ड्रामेटिक भी बना सकता हूँ। अब कहानी यहाँ और दिलचस्प हो रही है।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।